नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश और मेरे साथ हैं शालिनी।
आप सभी को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।
शालिनी, आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों से मौसम बदल रहा है?
आप सही कह रहे हैं सुरेश, गर्मी का मिजाज इतना बढ़ गया है कि घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता।
पिछले कुछ वर्षों से हमारे मौसम में लगातार तब्दीलियां आ रही हैं। पानी के स्रोत लगातार कम हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र में पानी का स्तर बढ़ गया है, तूफानों की तीव्रता बढ़ गई है, बारिशें या तो होती नहीं या फिर एक ही बार में ढेर सारी हो जाती हैं।
ये सब धरती के तापक्रम के बढ़ने के कारण हुआ है, जिसके कारण हमारे आसपास की जलवायु में परिवर्तन हो रहा है।
शालिनी, वैसे जलवायु में परिवर्तन एक सामान्य बात है, पहले भी ये रहा है, लेकिन जिस तेजी से आज परिवर्तन हो रहा है वो जरूर चिंताजनक है।
दोस्तों, इस महीने यानी जून के महीने में हम कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में पर्यावरण पर ही बात करेंगे।
पिछले 3 जून को हमने पेड़ों के महत्व के बारे में चर्चा की थी और आने वाले कार्यक्रमों में हम नदियों, कृषि पर पर्यावरण का प्रभाव आदि विषयों पर बात करेंगे।
तो सुरेश, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं?
शालिनी, आज हम बात करेंगे प्रकृति की जलवायु में होते परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में।
दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का असर पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है,
साथ ही साथ मानव जाति की जिंदगी के हर पहलू जैसे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, आजीविका, खान पान, रहन सहन, इन सभी पर पड़ता है।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ मेहमान और उनसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी मानसी।
धन्यवाद शालिनी। दोस्तों, जैसे हाल ही में 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और दुनिया भर में अनेक गतिविधियां आयोजित हुई, तो दोस्तों जैसे आज हम अपने कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह समस्या आखिर है क्या और आम जीवन को यह किस तरह से प्रभावित कर रही है। क्या हम वाकई इस समस्या को गहराई से समझते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इससे निपटने के लिए कुछ कदम उठाते हैं? इस विषय पर हमारे श्रोताओं को और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ मेहमान मौजूद हैं जो हमारे साथ अपनी राय और अनुभव बांटेंगे, और मैं अब उन्हें आमंत्रित करूंगी कि वे हमारे दोस्तों को अपना परिचय दे दें।
नमस्कार, मैं इंदुपुरी हूं। मैं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद में एक वैज्ञानिक हूं।
नमस्ते, मेरा नाम मुस्तफा है। मैं डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स यानी विकास विकल्प में एक पर्यावरण वैज्ञानिक हूं।
नमस्कार, मैं सारांश वाजपेयी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल से MBA कर रहा हूं।
नमस्कार, मैं पल्लवी पंत, मैं टेरी यूनिवर्सिटी से पर्यावरण विज्ञान पढ़ रही हूं।
आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन एक अहम चर्चा का विषय बन गया है। आए दिन हम अखबारों, टीवी चैनलों में इसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो पहले हम चलिए बात करते हैं कि ये समस्या है क्या और आप लोग इससे क्या समझते हैं।
भारत में अगर देखा जाए तो हम लोग जलवायु को अक्सर कहते हैं मौसम, मौसम का बदलना। मौसम जो वर्ड आया है, जो शब्द आया है, इसका डिराइवेशन अगर हम देखें तो ये अरेबिक वर्ड मानसून से डिराइव होता है। अब मानसून हमारे देश में इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़रूरी, इतना एक अहम हिस्सा है हमारे जीवन शैली का कि हम बिना मानसून के अपने आप को सोच भी नहीं सकते। तो हमारे पूरा कॉन्सेप्ट, हमारा वर्ड ही जो है मौसम से आया है। तो जब हमारा मौसम बदल रहा है, हम जिस तरह से हमारे पास बरसात की जो फ्रीक्वेंसी थी, पहले हर साल बरसात आती थी तो लोगों को लगभग पता होता था कि बरसात कब आने वाली है। आजकल जो है इसके बारे में बताना काफ़ी मुश्किल हो गया, और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स इस्तेमाल करने के बावजूद वैज्ञानिक जो है आपको एक एक्यूरेट डेट नहीं दे पाते हैं कि मानसून कब आएगा।
यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मौसम और जलवायु में थोड़ा सा अंतर इस प्रकार से है कि जलवायु जो है वह मौसम होता है, करीबन 30 वर्षों में जो किसी एक जगह का मौसम बन जाता है उसको हम जलवायु कहते हैं, और जलवायु परिवर्तन से आज के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करी जाए तो वह ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ज़्यादा चर्चा हो रही है। हम देख रहे हैं कि जलवायु इस तरह से परिवर्तित हो रही है कि सभी जगह पहले से ज़्यादा तापमान हम भारतवर्ष में फील कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में भी आजकल जून के महीने में पहले जो औसत टेम्परेचर होता था उससे ज़्यादा हमें गर्मी महसूस हो रही है। यह जलवायु परिवर्तन का ही एक नमूना है।
तो ये तो बात हुई बदलते मौसम और बढ़ते तापमान की। अब अगर हम जलवायु परिवर्तन के कारणों पर चर्चा करें तो कई तथ्य सामने आ रहे हैं और माना जा रहा है कि मनुष्य की गतिविधियाँ इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे?
काफी हद तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जैसे कि बढ़ता प्रौद्योगिकरण, इतने पेड़ जो काटे जाते हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और जगह जगह पे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं जिनसे प्रदूषण होता है, और उसी के कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और भी उसी प्रकार की गैसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से औसतन तापमान बढ़ रहा है और उसी के कारण जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है।
जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और अन्य उपकरणों से निकलते हैं, इनके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण ये भी है, पॉल्यूशंस और पॉल्यूटेंट्स के अतिरिक्त। और इनके कारण जो है ओजोन होल नाम की टर्म जो आप सब सुनते हैं, ओजोन होल जो है वो डिप्लीशन हो रहा है ओजोन की लेयर में, और उससे जो वातावरण में सूर्य की किरणें आती हैं वह पूरी तरह से वापस नहीं जा पाती, उनका विकिरण पूरी तरह से नहीं होता, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसका हमारी फूड चेन से लेकर और हमारे वनों पर और हमारे जल स्तर पर हर जगह इसका असर पड़ रहा है।
तो अभी तक जो हमने चर्चा की उसमें हमने जाना कि जलवायु परिवर्तन का सीधा असर कैसे हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें मनुष्य की, तो किस तरह से उसकी आजीविका पर, स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है?
हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हमारी जो अक्सर जो लोग काम करते हैं या जिनका जो जीवन का संसाधन है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। 70 से लेकर 80% तक लोग कृषि के ऊपर निर्भर हैं अब भी, हालांकि इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग अभी भी काफ़ी हद तक बरसात के ऊपर, तापमान के ऊपर निर्भर हैं। अगर बरसात नहीं होती तो फसलें आज भी जो है फेल हो जाती हैं, उपज अच्छी नहीं होती है, और फिर हमें दूसरे देशों से जो है खाद्य पदार्थ लाने पड़ते हैं। तो हम आज भी जो है बहुत हद तक हमारे आसपास की चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए जो है ये जलवायु परिवर्तन काफ़ी खतरनाक चीज़ है और इसको, इससे निपटना काफ़ी ज़रूरी है।
यहाँ पर मैं, जहाँ स्वास्थ्य के विषय की बात आई है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहूँगी कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, जो कि मॉस्किटोज वगैरह से और गंदगी से जो पैदा होने वाली डिजीजेज हैं, उनकी संभावना बढ़ रही है जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि मॉस्किटोज की ब्रीडिंग ज़्यादा हो रही है और मलेरिया, डेंगू जैसे जो बुखार हैं उनका भी जो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लोगों में ज्यादा आजकल देखी जा रही है, यह भी जलवायु परिवर्तन का ही एक रिजल्ट है।
इससे संबंधित एक काफी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई है, हिमालय में पहले मलेरिया एकदम ना के बराबर था, लेकिन आज क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो पहाड़ों पर का तापमान भी बढ़ रहा है और अब मलेरिया वहां पे भी देखा जा रहा है।
साथ में ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि वो लोग जो समुद्र तट के किनारे पर रहते हैं और जहाँ पर समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, उन लोगों के घर बार पर और उनकी आजीविका पर भी जलवायु परिवर्तन से काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, और उनको अब नया रहने की जगह या फिर नई आजीविकाएं ढूंढनी पड़ रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके रहने का स्थान और जहाँ पर वे अपनी आजीविका का कार्य किया करते थे वो अब शिफ्ट हो रहा है।
ऐसे ही अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की ऑब्जर्वेशंस को देखें तो यह भी कहा जा रहा है कि जैसे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे पहले तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे जिसके कारण बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह आ सकती है, और उसके बाद जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट होकर खत्म हो जाएंगे तो जल का स्तर कम हो जाएगा नदियों में और फिर ड्राउट वाली या सूखे की संभावना हो जाएगी, और ऐसे में हमारा कृषि प्रधान जो देश है उसकी आजीविका, लोगों की आजीविका पर बहुत ही बुरा असर इसका पड़ेगा, और इसके लिए हमें आज ही सोचना पड़ेगा और जो कुछ हम कर सकते हैं हमें करना होगा।
तो जैसे कि हमने बात की बाढ़ और सूखे के बारे में, आजकल हम देख रहे हैं, हमारे पास वैज्ञानिक तथ्य भी हैं कि प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ गई है और जलवायु परिवर्तन का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। तो जैसे कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में साइक्लोन आयला से काफ़ी जानमाल की क्षति हुई, तो ऐसी आपदाओं से निपटने में सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं?
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद जो है वह शुरू से ही साइंस की पॉपुलराइजेशन और कम्युनिकेशन के प्रोग्राम्स में लगा हुआ है। तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगी कि हम बच्चों के साथ, विलेज लीडर्स के साथ में और कम्युनिटी के साथ में कई तरह के प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कि फोक मीडिया, ड्रामा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और फील्ड प्रोग्राम्स के जरिए हम हर तरह के मुद्दों को उठाते हैं और जन जन तक उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी विषय में जलवायु और मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए बच्चों के साथ भी हमने कुछ मॉड्यूल्स तैयार किए हैं जिसमें कि किट्स बनाए गए हैं, और वह जो मौसम के पैरामीटर्स हैं उनको नाप भी सकते हैं, और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण, मानव के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके बारे में उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करे जा रहे हैं। और हमारा एक ही मैसेज रहता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, मतलब कि जो भी है चीज़ें उनका सही इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और बार बार इस्तेमाल करें, और किसी भी वेस्ट को जो है कम से कम जनरेट करने की कोशिश करें। और बच्चों में इस तरह की जागरूकता लाने के कई तरह के प्रयास हमारे यहाँ से किए जा रहे हैं।
शहरों और गांवों के अंदर काफ़ी अंतर होता है, इसीलिए जो स्टेप्स हम ले सकते हैं वो भी काफ़ी अलग तरह के होंगे। शहरों के अंदर क्योंकि सारे घरों में बिजलियां होती हैं, सबके पास कार है, मोटरसाइकिल्स होती हैं, तो यहाँ पे इस्तेमाल किस तरह से किया जाए इन चीज़ों का, जब इस्तेमाल में ना हो तो स्विचेस ऑफ कर दें, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन गाँव के अंदर अगर जाए तो क्योंकि वहाँ बिजली वैसे ही दिन में 2 या 3 घंटे आती है तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ पर कई और चीज़ें हैं जिनके अंदर हम लोग बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि इरिगेशन, यानी कि खेतों में जो पानी लगाते हैं लोग, वो किसान जो है पूरे फ्लड कर देते हैं, तो अगर उतना पानी ना डालें, थोड़ा कम पानी डालें, या ऐसी वैरायटीज़ का इस्तेमाल करें जो कम पानी में उग जाएं, तो उससे किसानों का फ़ायदा भी होगा, पानी भी बचेगा और बिजली भी कम लगेगी। इसके अलावा विकास विकल्प ने एक सीडी भी बनाई है जिससे कि हर कोई, सारे नागरिक जो हैं, अपना अपना कार्बन फुटप्रिंट खुद नाप सकते हैं, और वो ये भी देख सकते हैं कि उनका अगर 1 घंटा बिजली इस्तेमाल कम करें तो कितना कार्बन वो कम एमिट करेंगे।
जैसा कि अभी तक हम सब बात कर रहे हैं कि भारत में जितने भी ग्रामीण लोग रहते हैं उनकी प्रमुख आजीविका कृषि से ही होती है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से जो भी हो रहा है, जिसके कारण वो अपने खेतों में उनके जो फसलें लगी हैं वो बर्बाद हो रही हैं, तो उनके पास और कोई जरिया नहीं रहता पैसा कमाने का। तो अगर हम डाइवर्सिफाई करने में उनकी मदद करें और लाइवलीहुड उनके लिए जनरेट करने की कोशिश करें तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। दूसरी बात, माइक्रो क्रेडिट की जहाँ तक बात होती है, माइक्रो फाइनेंस की बात होती है, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए। किसान क्रेडिट कार्ड्स स्कीम जो आई है उसके तहत किसानों को थोड़े से कागजात जमा करके किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जिससे कि खाद्य सामग्री और अन्य प्रमुख चीज़ें वो खरीद सकते हैं, तो इन सब पे भी हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
इसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में आजकल नई तरह की फैसिलिटी भी स्टार्ट हुई है, जहाँ पर अगर आप पेड़ नहीं काटते हैं या नए पेड़ लगाते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसे दिए जा सकते हैं। और ना सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी इलाकों में भी ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सामान्य जन बल्कि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ के आएँ और छोटी छोटी चीज़ें जैसे बाज़ार जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना या पास की जगहों पे चल के जाना या 3-4 लोग साथ में मिलके गाड़ी का इस्तेमाल करें, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करने से भी हम काफ़ी हद तक अपना योगदान दे सकते हैं इस जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए।
कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए बच्चों को भी कई तरह के सुझाव दिए जाते हैं और बड़ों को भी, जैसे कि कारपूल्स, अभी मेरी फ्रेंड ने बताया कारपूल्स एक अच्छा अल्टरनेटिव है। उसी के साथ साथ जो रेफ्रिजरेटर्स और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बहुत पुराने हो चुके हैं तो देखा जाता है कि वह बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, तो समय समय पर ऐसे उपकरणों को बदलने में भी समझदारी है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे को प्लास्टिक्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और इसके लिए हमें कपड़े के बैग और जूट के बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक मामूली सा कदम है पर इससे जो है प्रदूषण में काफ़ी भारी कमी आ सकती है और जो नदियां और नाले चोक हो जाते हैं प्रदूषित जल से, वह हम किसी हद तक इसके साथ में रोक सकते हैं।
तो जैसे कि इंदु जी आपने हमें बताया कि कुछ मामूली कदम ही जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुत सहायक हो सकते हैं, तो आप जैसे डिपार्टमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करती हैं तो आप लोग किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं इस बारे में?
हमने कुछ प्रयास भुज अर्थक्वेक के बाद अपने यहाँ पर शुरू करे थे जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। इसमें हमने कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस की बात करी और बच्चों में और खासकर एनसीसी एनएसएस के छात्रों के साथ में हमने कई तरह के प्रोग्राम शुरू करे जिसमें कि बेसिक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के कारण क्या है और डिजास्टर्स के कारण क्या है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कैसे हो सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे बन सकते हैं जैसे कि हैम रेडियो इत्यादि का उपयोग, जबकि डिजास्टर के टाइम में सारा कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, उसको हमने प्रोत्साहित करा। इसके अतिरिक्त जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं जो कि बच्चे खुद कर सकते हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दी, और फर्स्ट एड के बारे में बेसिक जो है लाइफ सेविंग डिवाइसेस और किस तरह की पट्टियां बांध सकते हैं, किस तरह से वो लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं, इस बारे में ट्रेनिंग टाइम समय समय पर हम अपने संस्था की तरफ से देते रहते हैं और यह काफी ही सक्सेसफुल प्रयास रहा है। इसके अतिरिक्त जो फार्मिंग कम्युनिटी है और जो कि कृषि क्षेत्र के लोग हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो खादें हैं उनका भी अगर इरेशनल यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है तो भी उसके कारण एक खतरा बन जाता है हमारे पर्यावरण को, वातावरण को और जन समुदाय की हेल्थ के लिए। तो उनके बारे में भी जागरूकता हम लेकर आए हैं।
अगर हम देखें, अगर एक अकेले घर में देखें तो वहां पे रिसोर्सेज जो है काफी कम होते हैं, लेकिन अगर हम एक पूरे समुदाय को लें या पूरे एक मोहल्ले को लें, एक गांव को उठा के देखें तो उन सबका मिला के जो है काफ़ी अच्छा खासा रिसोर्स बेस बन जाता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को संगठित करें और जो अभी ऐसी बात हो रही थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, यानी कि स्वयं सहायता समुदाय बनाए जाएँ जिससे कि जब आपदा पड़े या जब ज़रूरत हो कोई भी किसी भी तरह की तो लोग एक साथ जुटे रहें और अपनी मदद खुद करने में भी सक्षम रहें। सरकार की मदद तो होती ही है लेकिन लोगों को खुद अपनी मदद करने के लिए भी रास्ते ढूंढने चाहिए और ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है एक सच्चाई है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसके प्रभाव बढ़ने ही वाले हैं। तो इसमें कई तरह के काम हो सकते हैं, जिस तरह से कि अगर आपका गांव किसी नदी के पास है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर नदी में बाढ़ आती है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कोई इस तरह की आप स्कीम कर सकते हैं कि आप अपना खाना जो है जो आप उगाते हैं अपने खेतों के अंदर उसका एक छोटा सा बैंक बना के रख लें, जब बाढ़ आए तब सब लोग उस खाने में से मिल बांट के खा सकें, या इस तरह की कोई और बिल्डिंग बना सकते हैं जिसके काफ़ी ऊपर माले हों जिसमें लोग शिफ्ट हो जाएं, भले ही उसमें दीवारें ना हो, कोई बेसिक सी बिल्डिंग हो जिसके अंदर लोग बचे रहें बाढ़ आने पर।
हाँ मुस्तफ़ा जी, इसके साथ मुझे ये लगता है कि हमारा जो स्वदेशी ज्ञान है या जो इंडिजिनस नॉलेज की हम बात करते हैं वो एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है हमारे पर्यावरण को बचाने में और उसके संरक्षण में। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों में, खासकर पहाड़ों में जो बसे लोग हैं वो प्रकृति के साथ बहुत बेहतर तालमेल बनाकर रहते हैं, तो ये शायद एक बहुत ज़रूरी सबक है हम सभी के लिए।
जैसे कि अभी बात हुई स्वदेशी ज्ञान और अभ्यास की, हमारे पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, और ये भी देखा जाता है किसी भी देश में कि बच्चे और जो यूथ होते हैं वो ही कुछ चेंज ला सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो अगर सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनका जो कोर्स है उसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के कुछ कोर्सेस शामिल कर लिए जाएँ तो इससे भी बहुत सहायता मिलेगी।
आप सभी हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज इस चर्चा में जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई पहलुओं पर हमने बात की और हमने ये जाना कि यह समस्या जिसे अक्सर पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाता है वह असल में हमारी विकास प्रणाली और आम जिंदगी में जो हम लापरवाही करते हैं उससे जुड़ी हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि हम और ज़्यादा जागरूक हों और हर वो छोटे से छोटा प्रयास करें, चाहे हमारे घर में, दफ्तर में या फिर आम जीवन में, जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिले और कम से कम हानि हो। तो दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पर्यावरण के बिगड़ते स्वरूप को सुधारने के लिए आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। ए, कारपूलिंग। बी, कम दूरी वाली जगह पर पैदल चलना पसंद करेंगे। सी, जहां हो सके साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। डी, इन सभी का प्रयोग करेंगे। सही जवाब आप हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। टाइप कीजिए आवाज स्पेस ABC या D, फिर स्पेस देकर अपना नाम और पता और भेज दीजिए 9811846246 पर। नंबर एक बार फिर सुन ले 9811846246।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज और आज हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के बारे में।
श्रोताओं, आज हमारे जीवन का हर पहलू जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है, चाहे वो पानी की सप्लाई हो या कृषि या फिर प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधे हो या पक्षी और जानवर,
यहाँ तक कि हमारी खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। हर किसी को जलवायु परिवर्तन से नुकसान पहुँचा है।
पर सुरेश, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या यह पूर्णतः एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या ये इंसान द्वारा पर्यावरण के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप का नतीजा है?
शालिनी, जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके प्राकृतिक कारणों की अगर बात करें तो धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों में बदलाव और धरती के कक्ष में बदलाव की वजह से जलवायु परिवर्तन होता आ रहा है
और हाल ही में ये बदलाव पिछले 10,000 सालों की तुलना में तेजी से हुआ है।
लेकिन जहाँ तक इंसानी गतिविधियों की बात आती है तो आप तो जानते हैं कि 20वीं सदी तक आते आते औद्योगिकरण काफी तेजी से बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधनों जैसे तेल, कोयला, गैसें आदि का औद्योगिकरण के कार्यों में इस्तेमाल हो रहा है।
दोस्तों, इसके साथ ही कृषि योग्य भूमि पर जगह जगह फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों को इनके निर्माण, ट्रांसपोर्ट आदि के लिए प्रयोग किया जा रहा है।
इन सब के अलावा लोगों की लग्जरी चीजों के प्रति मांगे बढ़ने लगी हैं। इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ावा मिल रहा है।
सुरेश, जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों के निकलने की बात है तो यह कहा जा सकता है कि विश्व में 25 ऐसे देश हैं जो कि ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकालने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं।
आप सही कह रहे हैं शालिनी, इनमें से 14 देश वे हैं जो 90% ग्रीन हाउस गैसों को निकालते हैं।
दोस्तों, इस सब के लिए विकसित देश तथा विकसित समाज की जीवन शैली जिम्मेदार है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव विकासशील तथा अल्प विकसित देशों पर पड़ता है।
शालिनी, ये देश जलवायु में इन सब परिवर्तनों के असर को अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं ढाल पाते हैं।
इसके लिए जरूरी है कि ये देश पर्यावरण के सरोकारों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को संबोधित करें और विकास की राह में आगे बढ़ते हुए मानवीय पहलुओं पर गौर करें।
साथ ही अलग अलग देशों के राजनेताओं को साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जतानी होगी और क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा।
आम नागरिक को भी सरकार पर ऐसी नीतियां बनाने के लिए दबाव डालना होगा जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे।
दोस्तों, पर्यावरण के बिगड़ते स्वरूप को सुधारने के लिए कुछ बड़ी बड़ी बातों के अलावा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि
अपने वाहन का कम से कम इस्तेमाल करें,
जितना हो सके सामूहिक वाहन जैसे बसों, मेट्रो आदि में सफर करना, कम दूरी वाली जगह पर पैदल चलना,
बिजली का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें, CFL बल्बों का इस्तेमाल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, वृक्ष लगाएं।
दोस्तों, हमें एक ऐसी जीवन शैली अपनाने की जरूरत है जो पर्यावरण पर कम से कम असर डाले, क्योंकि इस तरह का बदलाव अगर हम अपने जीवन में ला सके तो ही हम दूसरों को बदलने के लिए प्रेरित कर सकेंगे।
हमें अपने जीवन में इको फ्रेंडली जीवन शैली को अपनाना बेहद जरूरी है।
इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का,
पर विदा लेने से पहले हम आपको बता दें पिछले हफ्ते का सही जवाब।
दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 5 जून, और इसके लिए हमें 27 सही जवाब मिले हैं। दोस्तों, आज का सवाल है, पर्यावरण के बिगड़ते स्वरूप को सुधारने के लिए अपने स्तर पर आप क्या करेंगे? ए, कारपूलिंग, बी, कम दूरी वाली जगह पर पैदल चलना पसंद करेंगे, सी, जहां हो सके साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, डी, या फिर इन सभी का प्रयोग करेंगे। सही जवाब आप हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। टाइप कीजिए आवाज स्पेस ABC या फिर D स्पेस अपना नाम पता और भेज दीजिए 9811846246 पर। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 9811846246।
इस विषय पर अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज, केयर ऑफ वन वर्ल्ड साउथ एशिया, C5 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016।
आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01141689000 और हमारा एक्सटेंशन नंबर है 116।
दोस्तों, किसी कारणवश अगर आप हमारा कार्यक्रम रेडियो पर न सुन पाए हो तो आप हमारी वेबसाइट www.edaa.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं।
इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते बुधवार के दिन शाम 4:30 बजे एक और नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए मुझे शालिनी और सुरेश को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।